मुख्य समाचारों में लेबर द्वारा चुनाव जीतने पर रोबोट एक्ट में एक शाही आयोग का वादा, गठबंधन द्वारा दवा की लागत कम करने का वादा, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का दावा कि सोलोमन सौदे की घोषणा का चीन का समय चुनावी हस्तक्षेप का एक रूप, और भारत में पटियाला हिंसा मामले में पंजाब की सुरक्षा में चौकसी। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल के बजट के बजाय अगले साल दवाओं में $10 की कटौती करने के अपने निर्णय का बचाव किया है। यदि गठबंधन फिर से चुनी जाती है तो रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी रोजमर्रा की स्थितियों के लिए फार्मास्यूटिकल बेनिफिट स्कीम के तहत सूचीबद्ध सभी दवाओं की लागत को कम करने का गठबंधन वादा कर रही है। इसमें PBS दवाओं की अधिकतम कीमत $42.50 से गिरकर $32.50 हो जाएगी। श्री मॉरिसन का कहना है कि ये भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है और इससे मरीजों को सालाना $120 की बचत होगी।
There are many things you can't control. You can't control the war in Europe. You can't control natural disasters. You can't control whether there's a pandemic or not. All of these things impacting on the prices Australians are paying every day. But what you can do is what we're doing. You can provide that relief, as we did in the budget. You can make the safety net more generous to help people who are on these medications. And you can reduce this non-concessional payment down by $10 on every single script.
Ye policy, Federal Treasurer जॉर्ज फ्राइडनबर्ग के बजट भाषण से छूट जाने के बाद सहायक कोषाध्यक्ष माइकल सुकर और वित्त सेवा मंत्री जेन ह्यूम द्वारा गलती से इस साल की शुरुआत में घोषित की गई थी। ये 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। लेबर के बिल शॉर्टन का कहना है कि उन्होंने रोबोडेट योजना से प्रभावित परिवारों से बात की है, जो कहते हैं कि उनका मानना है कि कर्ज के दबाव में आकर ही परिवार के कुछ सदस्यों ने आत्महत्या की। पूर्व लेबर नेता और वर्तमान शैडो गवर्नमेंट सर्विसेज मिनिस्टर ने पार्टी की सरकार जीतने पर रोबोडेट योजना में एक शाही कमीशन बिठाने का वादा किया है। गठबंधन सरकार द्वारा अधिक भुगतान का दावा करने के कारण धन के लिए कल्याण प्राप्तकर्ताओं के खिलाफ ऋण जुटाने के लिए रोबोटेड टैक्स और सेंट्रल लिंक डेटा का स्वचालित यानी ऑटोमेटेड मिलान था। 2019 में इसे गैर कानूनी माना गया, जिसमें रोबोटेड पीड़ितों और फेडरल सरकार के बीच 2020 में $1.2 बिलियन का समझौता हुआ। श्री शॉर्टन कहते हैं कि प्रभावित लोग पहले से ही संवेदनशील थे।
The government from April 2015 initiated what it called the online compliance scheme, became not so affectionately known as RoboDebt, where the government raised debt notices of $1.8 billion against nearly 500,000 Australians. Terrible harm was done. I have spoken to families who absolutely believe that the pressure of the unfair debt notices raised against loved family members contributed to them taking their own life.
Crisis support चाहने वाले श्रोता लाइफलाइन से 131114 को संपर्क कर सकते हैं या क्यू लाइफ को 1800-184-527 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री से गृह मामलों के लिए मंत्री कैरन एंड्रयूज द्वारा उन टिप्पणियों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है जिन्होंने चीन पर चुनावी हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। सुश्री एंड्रयूज का मानना है कि चीन ने फेडरल चुनाव अभियान के अनुरूप सोलोमन द्वीप समूह के साथ समझौते की घोषणा की। स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के पास सुरक्षा उपाय हैं।
Of the influence the Chinese government seeks to have in this country. We in fact introduced laws to prevent it. So any suggestion that the Chinese government doesn't seek to interfere in Australia, well, we didn't put that legislation in for no reason. We put it in there to ensure that Australians' security could be safeguarded from foreign influence in our own country.
ये तब आता है जब सोलोमन आइलैंड के प्रधानमंत्री मनसे सोगावरे ने ऑस्ट्रेलिया पर पाखंड का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्हें केवल मीडिया के माध्यम से ऑकस संधि के बारे में पता चला।
I learned of the AUKUS treaty in the media, Mr. Speaker. One would expect that as a member of the Pacific family, Solomon Islands or members of the Pacific should have been consulted to ensure that this AUKUS treaty is transparent, since it will affect the Pacific family by allowing nuclear submarine in Pacific waters.
Greens के नेता Adam Brent मतदाताओं से Liberal Party के सामने Labour को प्राथमिकता देने का आह्वान कर रहे हैं। श्री ब्रेंट ने एक बयान जारी करके कहा है कि ग्रीन हाउ टू वोट कार्ड मतदान केंद्रों पर उपलब्ध होंगे और प्रमुख लिबरल सीटों और लेबर सीटों पर प्रगतिशील उम्मीदवारों यानी प्रोग्रेसिव कैंडिडेट्स जलवायु निर्दलीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देंगे। उनका कहना है कि ग्रीन्स देश भर में 151 सीटों पर है और कई प्रमुख सीमांत सीटों पर ग्रीन्स की प्राथमिकताएँ महत्वपूर्ण होंगी। और अब कोविड 19 संबंधित आंकड़ों में न्यू साउथ वेल्स में 20 मौतें और 11,709 नए मामले दर्ज किए गए। विक्टोरिया में 19 मौतें और 9,064 नए संक्रमण। क्वींसलैंड में वायरस से 5 मौतें और 5,885 नए मामले दर्ज किए गए। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 6,029 नए मामले, 234 अस्पताल में भर्ती, जिनमें से 8 लोग गहन देखभाल में हैं। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में 4 नई मौतें, 3,907 नए संक्रमण। नॉर्दर्न टेरिटरी में 395 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि तस्मानिया में 1,054 नए संक्रमण हुए और एसीटी ने 1 मौत और 939 नए मामले दर्ज किए हैं। और भारत में पटियाला हिंसा मामले में आईजी, एसएसपी और एसपी को हटा दिया गया है। मुखविंदर सिंह चिन्ना को पटियाला रेंज का आईजी बनाया गया है। पटियाला हिंसा मामले में सरकार की तरफ से काफ़ी चौकसी है। पटियाला उपायुक्त ने एनडीटीवी को बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और छापेमारी की जा रही है। अब तक इस मामले में 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए पंजाब सरकार के गृह विभाग ने इंटरनेट पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पटियाला में शिवसेना के द्वारा निकाले गए खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी और कई संगठन आमने सामने हो गए थे। दोनों ओर से तलवारें भी निकली और पथराव भी किया गया और तभी स्थिति तनावपूर्ण बन गई। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 70 सेंट और भारत के 54 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में, इयान चेस्टरमैन को ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वो जॉन कोर्ट्स की जगह ले रहे हैं, जो इस पद पर 32 साल के बाद भूमिका छोड़ रहे हैं। चेस्टरमैन को इस पद के लिए मार्क स्टॉकवेल के 26 वोट्स के सामने एओसी प्रतिनिधियों के 67 वोट मिले। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी रविवार को पर्थ में धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। होबार्ट में बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। कैनबरा में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 2 डिग्री। सिडनी में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। ब्रिस्बेन में बौछारें, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री। और डार्विन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 35 डिग्री, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।